رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. कैसे हैं आप सब लोग? और जो लास्ट लेसन हमारा था वो आप लोगों को समझ आया? मुरक्कबे इजाफी में हम लोगों ने पढ़ा था बमायल का इस्तेमाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उसमें जो चीज़ें हम लोगों ने की थी वाहिद मुज़क्कर गायब से रिलेटेड, और एक और पॉइंट था हमारा हुमा हुम और हुन्ना, उसकी मैंने पिक्चर आपको समझ सेंड भी की थी। तो अगर कोई उसमें क्वेश्चन हो अभी किसी स्टूडेंट का तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलें। इसमें आप लोग फिफ्थ पारा शुरू से खोल लें, फिर उसमें हम थोड़े से देख लेते हैं कि अस्मा के साथ जब भी बमायर मिलते हैं तो उससे फिर जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कबे इजाफी की कैटेगरी में आता है। क्योंकि जो बमायर है वो बाज़ दफ़ा फेल के साथ मिल के आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हरूफ के साथ मिल के आ रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस होंगी। लेकिन अभी जो हमारे इस टॉपिक के अंडर जो पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ इसम को कॉन्सेंट्रेट करना है हमें, कि इसम के साथ में जब दमीर आती है तो वो मुरक्कबे इजाफी होता है। उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिफ्थ पारा की स्टार्ट से आप लोग ओपन कर लें, और जैसे हमने देखा था कि जो मुदाफ इलाही होता है वो हमेशा हालत जर में होता है, ये उसकी एक कंडीशन थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास बमायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुरक्कबे इज़ाफ़ी में, वो या तो हालत नसब और हालत जर, इन दोनों के बमायर का एक फिगल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो भी हमारे पास इसम के साथ मिलकर दमीर जब आ रही है और मुरक्कबे इज़ाफ़ी की एक कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, तो उसमें हमने जो दमीर है उसको अंडरस्टूड है कि वो हालत जर की है। वैसे तो ये जो आपको टेबल भेजा गया है ये हालत नसब और हालत जर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जब मुदाफ इलेह के तौर पर ये दमायर इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन सब दमायर की जो हालत है वो हालत जर है, क्योंकि ये तमाम मबनी है, इनमें कोई एराब से जज तो नहीं कर सकते हम, तो इसलिए ये तमाम मुदाफ इलेह होने की वजह से मजबूर है। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں فرسٹ آیا میں 24 آیات میں دیکھیں کہ اسم کے ساتھ کوئی ضمیر کی ہمیں کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، جی اس میں سب سے پہلے ایمانکم الا ما ملکت ایمانکم، हाँ जी किताब अल्लाह ही, एक्जैक्टली ये इसम के साथ है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन किताब अल्लाह ही है इसमें दोनों अस्मा हैं, हम लोगों ने देखना है जो कि इसम मुदाफ हो और मुदाफ इलेह की जगह के ऊपर दमीर हो। ये जो हमारा टॉपिक है ना मुरक्कबे इजाफी में दमायर का इस्तेमाल उसमें, तो ये ऐमानुकुम सबसे पहले हमारे पास आ रही है बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट को हम देखें उहिल्ला लकुम। अब ये जो लकुम है इसमें हमारे पास लकुम में इसम इस्तेमाल नहीं हो रहा गमी के साथ, तो ये हमारा मुरक्कबे इजाफी नहीं है। हाँ जी भी अम्वालिकुम, यहाँ पे अम्वालिकुम जो है ये हमारा मुदाफ मुदाफ इलैह है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आ रही है वो हमारी उजूरहुन्ना है, उनके अजर, यानी यहाँ पर हुन्ना फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि उन औरतों के अजर। फिर आप 25th आया में आए, 25th आया में फाइंड आउट करें कि मुरक्कबे इजाफी दमीर के साथ इसमें भी पहले हमारे पास ईमानुकुम है, फिर उसके बाद मिन फतयातिकुम, फतयातिकुम में हमारे पास जी ईमानुकुम जी, और उसके बाद फतयातिकुम जो है ये कंस्ट्रक्शन हमारी मुरक्कबे इजाफी की है दमीर के साथ। फिर इसी आया में आगे तनकीशु हिन्न भी इज्नी अहली हिन्न, यहाँ पे अहल इस्म है, फिर अहली हिन्न बमीर के साथ हो गया, उनके अहल घर वाले, यानी जो यहाँ पर भी औरतों के लिए बमीर इस्तेमाल हो रही है हुन्ना की। फिर उजूरा हुन्ना दोबारा से आया है, हाँ जी बाबुकुम, ये भी हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इसके बाद 26, हाँ जी उजू रहना, फिर 26 में अगर हम देखें तो सुनन लजीन कबलिकुम, कबलिकुम ये हमारे पास आ रहा है मुरक्कब इज़ाफ़ी बमीर के साथ है। उसके बाद 29 आया में हमारे पास अगेन अम्बुआ लखुम आ रहा है, और 29 आया में ही वला तकतुलु अनफुसकुम, फअलैहिन्न आला जो है ये हमारे पास इस्म नहीं है, ये इंशाल्लाह जो हमारे मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद हम जो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट मुरक्कब स्टार्ट कर लेंगे उम्मीद है उसमें उसकी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये हर्फ के साथ जब दमीर आती है तो वो एक और मुरक्कब बनता है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस्म हो मुदौक में और मुदौक इलेह में हमारे पास दमीर है। हाँ सही आतिकुम ये हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी है, माया में आ रहे हैं ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं अपने चैप्टर, और मैंने व्हाट्सएप पे आज आप लोगों को एक पेज सेंड किए, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हैं जो आपने बनानी है फिर, तो वो कंस्ट्रक्शन भी रमाए के साथ मिलके बनाने वाली है, वो आप लोगों का एक होमवर्क है, और फिर कुरान मजीद से 5 एग्जाम्पल्स, और ये जो सारा होमवर्क है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में दमीर के इस्तेमाल से रिलेटेड है। तो जो आपने कुरान से भी एग्जांपल्स ढूंढनी है उसमें ध्यान रखना है कि इस्म और दमीर हो, ऐसे मुरक्कब इज़ाफ़ी को आपने ढूंढ के तो लिखना है। एक वो पेज जो व्हाट्सएप पे है, और 5 एग्जांपल्स कुरान मजीद से सर्च आउट करके लिखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए। फिर अब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी ही में थोड़ा सा आगे जाते हैं कि इसमें हमने जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी में दमाए का इस्तेमाल भी देखा, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें हमारे पास दो से ज़्यादा वो होते हैं अस्मा होते हैं, दो से ज़्यादा अस्मा, उनको हम कैसे तरकीब देते हैं, यानी जो उर्दू की कंस्ट्रक्शन को जब हम ट्रांसलेट करना चाह रहे होते हैं अरबिक में तो उसमें क्या तरकीब होती है। फिर अस्माए खमसा जो हमारे पास थे उनके साथ हमने देखा था कि उसमें हमारे पास अलिफ वाओ और या, इन तीनों की कंस्ट्रक्शन होती है अराबी हलक अलिफ या वाओ और या के साथ इंडिकेट करके हमने उसको भी बनाना सीखा था। तो अब हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी में नेक्स्ट पॉइंट है सिफत का इस्तेमाल, जैसे सिफा मसूफ को हम पढ़ चुके हैं का तरीका, तो अब वो अगर सिफत हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के हमारे पास अंदर आ जाए तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी और उसमें हम कैसे जज करेंगे कि अरबी कंस्ट्रक्शन में ये जो सिफत है ये किसकी है, मुदाफ की है या मुदाफ इलैह की। इसमें अभी मैंने आपको होमवर्क बताया कि एक पेज है जो व्हाट्सएप पे आप लोगों को दिया गया है वो करना है, और दूसरा पांच एग्जांपल्स ढूंढ के लिखनी है कुरान मजीद से मुरकबे इजाफी में दमीर के इस्तेमाल की। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं मुरकबे इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। तो इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन आपके पास आए जिसमें सिफत का इस्तेमाल हो रहा हो तो वो सिफत या तो मुदाफ की सिफत होगी और या मुदाफ इलेह की। तो उसमें हमारे पास जो चेंज करने का तरीका कार है उसमें आप सिफत को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के सिर्फ जो एक सादा कंस्ट्रक्शन है मुरकबे इजाफी की वो बिल्ड करें। पहले सबसे पहले स्टेप में मुदाफ को मुदाफ की जगह दें, मुदाफ इलेह की जगह देने के बाद फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे सिफत को लिखेंगे, और सिफत जो है वो हमेशा मुरकबे इजाफी में आखिरी नंबर पे होती है, यानी थर्ड सबसे आखिर में लिखी जाती है। जैसे एक कंस्ट्रक्शन के साथ मैं आपको इस बात को समझाती हूँ, जैसे अल्लाह का बाइज्जत रसूल। अब इसमें अल्लाह का रसूल एक आम कंस्ट्रक्शन है और उसमें हमने बाइज्जत रसूल के साथ स्टिक कर दिया कि रसूल की सिफत है कि वो बाइज्जत है। तो अब हम अगर इस कंस्ट्रक्शन को सिर्फ मुदाफ मुदाफ इलेह में बनाएं तो रसूलुल्लाह ही, हमने हल्का इराब रखना है मुदाफ का और उसको मदमूम रखेंगे, दमा के साथ होगा क्योंकि नॉर्मली जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो दमा के साथ होती है, इल्ला ये कि वो किसी सेंटेंस में आके फिर उस पर कोई भी स्टेटस अगर वो चेंज कर ले तो फिर वो एराबी हालत उसकी चेंज होती है, या तो वो मफतूह हो जाती है या वो मजरूर हो जाती है। तो फिर अल्लाह ही कसरा के साथ होगा क्योंकि मकसूर होगा क्योंकि मुदाफ इलेह है। तो रसूलुल्लाह, अब यहाँ पे हमारे पास बाइज्जत जो सिफत आ रही है रसूल की उसको हमने सबसे आखिर में लिखना है रसूलुल्लाह, और उस सिफत को हम जब लिखेंगे तो चूंकि वो रसूल की सिफत है तो जैसा हमने देखा था कि जो सिफा मौसूफ है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं हर चीज़ में, एराब में ये जो हमारे पास अदद होता है इसमें, फिर यानी चारों अतबारात जो हम पढ़ चुके हैं उन चारों अतबारात में सिफा मौसूफ को फॉलो करती है। तो इसलिए हमने जब सिफा लगानी है तो वो हमने रसूल के मुताबिक में लगानी है। रसूल मारिफा है तो सिफा को मारिफा रखेंगे, रसूल सिंगुलर है तो सिफा सिंगुलर होगी, रसूल मरफू है तो सिफा भी मरफू होगी। तो इस तरह हमने बाइज्जत के लिए जो हमें अरबी में लफ्ज़ मिलता है वो करीम मिलता है तो उसको हम मारिफा करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रसूलुल्लाह ये मारिफा कंस्ट्रक्शन आ रही है रसूल की, रसूल भी मारिफा है और अल्लाह भी मारिफा है। तो अल करीम हम रखेंगे रसूल की सिफत को, उसको दमा देंगे क्योंकि मुदाफ हमारे पास मजमूम है, और सिंगुलर रखेंगे अदद के अतबार से क्योंकि रसूल है, अगर रसूल होंगे तो फिर हम करीम की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह का बाइज्जत रसूल इसकी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनेगी फाइनली, हाँ जी, अल करीमु बनेगी। रसूलुल्लाहिल करीमु, इसमें रसूल भी दम्मा के साथ है और करीम भी दम्मा के साथ है क्योंकि करीम जो सिफत है वो रसूल की है। फिर इसी कंस्ट्रक्शन को अगर हम थोड़ा सा स्विच करके जो बाइज्जत यानी जो सिफा है वो अगर हम अल्लाह के साथ ले आए, यानी बाइज्जत अल्लाह का रसूल, तो उसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, यानी रसूल अल्लाह और करीम इनकी तरतीब चेंज नहीं होगी, सिर्फ एराबी हालत थोड़ी सी बदल जाएगी अल करीम की और वो कसरा के साथ आ जाएगा, मकसूर हो जाएगा क्योंकि रसूलुल्लाह में अल्लाह ही हमें मुदाफ इलेह की शर्त है कि वो हमेशा मकसूर होगा, तो जब सिफा मुदाफ इलेह की होगी तो वो भी कसरा के साथ ही आएगी। तो अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को लिखें कि बाइज्जत अल्लाह का रसूल, तो रसूलुल्लाहिल करीमी, वहाँ पे हमने मीम को कसरा दे देनी है। तो लिखने में इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो इसके एराब हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। रसूलुल्लाहिल करीमी, फिर कुरान मजीद में हमें जैसे एक कंस्ट्रक्शन मिलती है नारुल्लाहिल मुकदर, ये हमारे पास एक सूरत में ये आयत में अल्फाज आते हैं, इसको अगर हम एनालिसिस कर लें इसका, नारुल्लाहिल मुकदर, नारुल्लाह अल्लाह की आग। अब यहाँ पर हमारे पास अल-मुकदा, अल-मुकदा तो आया, तो इसको हमने अब देखना है कि ये किसकी सिफत है। जैसे हमें पता है कि अल्लाह जो है वो लफ्जी तौर पर मुजक्कर है, लेकिन जो नार है उसके लिए हमें पता है कि नार चूंकि जहन्नम के नामों में से है, और जहन्नम के नाम नाम हमने देखा था कि ये मुअन्नस में आते हैं, तो अल-मुकदतु में हमें लास्ट में ताए मरबूता मिल रही है जो कि मोनस की अलामत है। तो यहाँ पर अल-मुकदा जो है वो मुदाफ की सिफा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कि मुकदा का मतलब होता है भड़काई हुई, तो यहाँ पर भड़काई हुई आग है जो अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह की भड़काई हुई आग, यहाँ पर मुकदा नार की सिफत के तौर पर आ रहा है, और नारुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैह है, और अल-मुकदा सिफा है नार की। तो इस कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि मुदाफ मुदाफ इलेह के बाद सिफा आएगी, और सिफा का एनालिसिस हम लोगों ने जो करना है वो देखना है कि वो उसकी एराबी हालत और उसके जो अदद हैं जेम्स है वो सब किसके किसके साथ मुताबिकत रखते हैं, या मुदाफ के साथ या मुदाफ इलेह के साथ। जब हम उनका एनालिसिस करके तो फिर हमें पता चल जाएगा कि असल में ये सिफा मुदाफ की है या मुदाफ इलेह की। अब एक और कंस्ट्रक्शन है जो मैं आप लोगों को देती हूँ, आप उसको ट्राई करें बनाने के लिए, अल्लाह के नेक बंदे। बंदे यहाँ पर चूँकि जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है नेक बंदे, तो बंदों के लिए इबाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस कंस्ट्रक्शन को आप बनाएं, अल्लाह के नेक बंदे। बिल्कुल ठीक, इबादुल्लाहिस्सालिहून। यहाँ पे चूंकि जो सिफा है वो हमारे पास बंदों की आ रही है, तो हमने अस्सालिहून का वर्ड यूज़ किया है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे सालिहीन लिखते हैं तो सालिहीन नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इबादुल्लाही में इबाद हमारे पास मुदाफ है, और मुदाफ के ऊपर अगर कभी भी अगर हम जुमले के अलावा उसको कंस्ट्रक्ट करें तो हम उसको मरफू ही रखेंगे। अगर वो जुमले के अंदर आ रहा है और फिर उसकी अराबी हालत किसी भी वजह से चेंज हो रही है, तो फिर हम उसकी अराबी हालत को या तो मफतूह करेंगे या मकसूर करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि जुमले से बिल्कुल अलग है तो इसको हमने मरफू रखना है इबाद को, और अस्सालिहून उसकी सिफा आएगी, क्योंकि अस्सालिहून जो है वो हमारे पास हालत नसब या हालत जर की कंस्ट्रक्शन है, और अस्सालिहून जो है वो हमारे पास मरफू कंस्ट्रक्शन है। अब यही बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन है इबादुल्लाहिस्सालिहून, ये हमारे पास इस्तेमाल होती है जब हम तशहुद पढ़ते हैं, तशहुद के अंदर वअला इबादिल्लाहिस्सालिहून। यहाँ पे इबादी किसी वजह से कसरा के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इराबी हालत इसकी मजरूर है, तो इसके मजरूर होने की वजह से जो इबाद की सिफा है वो भी मजरूर आई है, इबादुल्लाह व अला इबादिल्लाही अस्सालिहीन। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चेंज हुई, किस वजह से? इबाद के इराबी हालत के बदलने की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास होगी कंस्ट्रक्शन सिफत के साथ। ठीक, अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे मुरकबे इजाफी में, और वो क्या है कि मुरकबे इजाफी में इस्म इशारा का इस्तेमाल। जो अस्माए इशारा हम इससे पहले देख चुके हैं, मुरकबे इशारी में, मुरकबे इशारी के टॉपिक के अंदर जो अस्माए इशारा हमने देखे, उनका इस्तेमाल जब हम मुरकबे इजाफी में करेंगे तो वो किस तरह से होगा? हाँ जी, जो सिफत है वो हमेशा मुदौफ मुदौफ ले के आखिर में लिखी जाएगी, और हमने ये एनालिसिस करना है कि ये असल में सिफत किसकी है, मुदौफ की है या मुदौफ इलेह की है। तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद, यानी मुदौफ मुदौफ इलेह की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद, आप देखें कि ये किसके साथ सिफत है, फिर उस को आप एनालिसिस करें। फर्स्ट करें, अगर मुदौफ के साथ है तो आप मुदौफ को पहले चारों एतबारात से देखें, अराबी हालत, उसका अदद, उसकी जेंस, ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर आप जो सिफत है उसको कंस्ट्रक्ट करें उन्हीं चार में दोबारा से, और आखिर में उसको लिख दें। हाँ जी, उसके चारों एतबारात से, सिर्फ इराब को नहीं हमने देखना, जो चारों एतबारात हम पढ़ चुके हैं इसम के, उन चारों एतबारात से हमने उनको इक्वल रखना है। क्योंकि सिफा मौसूफ जब हमने पढ़ा था मुरक्कब, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो सिफा है वो मौसूफ को हर चीज़ में फॉलो कर रही होती है। चारों जो एतबारात हम पढ़ चुके हैं उन सब में सिफा फॉलो कर रही होती है। तो इससे हम जब बनाएंगे इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हमने इस चीज़ का ध्यान करना है। और असल में यही जो चार पॉइंट्स हैं, यही हमें भी अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन को कुरान मजीद में पढ़ रहे हैं तो हमें भी इन्हीं चारों एतबारात की वजह से पता चलेगा कि असल में ये जो सिफा है ये किसकी है, मुदौफ की है या मुदौफ इलेह की है। जिसको भी वो चारों एतबारात से सिफा फॉलो कर रही होगी उसी की वो सिफा होगी। ठीक, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, मुरकबे इजाफी में अस्माए इशारा का इस्तेमाल। ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे हमने अभी जो देखा कि पहले हम मुरकबे इजाफी की एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के बाद आखिर में हम सिफा को पुट कर देंगे, और उसको फिर देखेंगे कि उसकी एराब और जेंस और अदद के अतबार से हमने उसको किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जो अस्माए इशारा है इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, कि जैसे एक कंस्ट्रक्शन में आपको देती हूँ कि इस लड़के की किताब। अब यहाँ पर जो लड़के की किताब, किताबुल वलदी, लेकिन यहाँ पे जो इस्म इशारा इस्तेमाल हुआ है वो वलद के साथ हुआ है, लड़के के साथ हुआ है, यानी मुदौफ इलेह के साथ हुआ, किताबुल वलद, उस लड़के की किताब। इसमें हमारे पास जो इस्म इशारा है वो वलद के साथ है, मुदौफ इलेह के साथ है। तो अगर मुदौफ इलेह के साथ इस्म इशारा होगा तो उसको हमने मुदौफ इलेह से पहले लिखना है। हाँ जी, ये एक कंस्ट्रक्शन है उस लड़के की किताब जिसमें हमारे पास इस्म इशारा इस्तेमाल हुआ है उसका। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अब हमने इस्म इशारा को किस तरीके के साथ हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास मुदौफ इलेह के साथ इस्म इशारा इस्तेमाल हुआ है लड़के के साथ, तो उसको हमने वलद से बिफोर लिखना है, यानी किताबु जालिकल वलद। यहाँ पे दूर का इशारा इस्तेमाल हुआ है, तो जो आपके पास जो दो टेबल्स अस्माए इशारा के थे करीब और बईद, उनकी तरफ आप देखें जाके अपने पिछले नोट्स में या किताब में, तो उसमें से हमने इसम इशारा बईद देखना है जालिका का। और जालिकल वलद लिखेंगे हम मुदौफ इलेह से पहले हमने इसम इशारा को डालना है। यानी अगर हमारे पास इसम इशारा मुदौफ इलेह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम मुदौफ इलेह से पहले लिखेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है कि उस लड़के की किताब, उसको हम लिखेंगे किताबु जालिकल वलद। जैसे अब हमारे जो अस्माए इशारा हैं वो तमाम के तमाम मबनी होते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी एराब है उसको जज हम इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा इसम इशारा यानी जिसकी तरफ किया जा रहा है इशारा, जैसे इस कंस्ट्रक्शन में अलवलद है, तो अलवलद चूंकि मजरूर है मुदौफ इलेह होने की वजह से, तो यहाँ पर ये जो हमारा जालिका का इशारा है ये भी इराबी हालत में मजरूर होगा। और अदद में ये उसको फॉलो करेगा, क्योंकि अदद में हमने जैसे देखा था कि वाहिद और तस्निया और जमा डिफरेंट होते, तो अदद में वो फॉलो करेगा अपने जिस इसम को जो कि उसकी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन इराबी हालत में चूँकि मबनी होते इसलिए जो भी इसम इशारा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी जो इराबी हालत होगी वही इसम इशारा की होगी। जैसे अलवलद मजरूर है तो जालिका भी मजरूर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये हमने देख लिया कि अगर हमारा जो इसम इशारा है वो मुदौफ इलेह के लिए इस्तेमाल हो तो हमने उसको मुदौफ इलेह से पहले डालना है, लेकिन अगर हमारा जो इसम इशारा है वो मुदौफ के लिए इस्तेमाल हो, जैसे इसी कंस्ट्रक्शन में हम जो इसम इशारा है वो मुदौफ के लिए करके इसको चेंज करें कि लड़के की ये किताब। अब यहाँ पे ये किताब जो किताब है वो हमारे पास मुदौफ है, तो किताब की तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। जो दूसरी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, लड़के की ये किताब, किताबुल वलद, सॉरी बामिस हो गया, तो इसमें अब हम जैसे अगर मुदौफ की तरफ इशारा जब किया जाएगा तो उसमें हमने जो इसम इशारा है वो आखिर में लिखना है, यानी मुदौफ इलेह के बाद लिखना है। जैसे यहाँ पे जो इसम इशारा इस्तेमाल किया गया है वो ये किताब का है, तो ये करीब का इशारा है, हाजा मुजक्कर का इशारा, अलवलद सॉरी किताब जो है वो मुजक्कर है तो मुजक्कर का इशारा हम इस्तेमाल करेंगे, फिर किताब वाहिद है तो इसलिए हम हाजा वाहिद का इशारा ले रहे हैं, तो इसको हमने जो फिक्स करना है वो वलद के बाद यानी मुदौफ इलेह के बाद लिखना है। अगर हमारा इसम इशारा मुदौफ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कंस्ट्रक्शन के आखिर में लिखेंगे, किताबुल वलदी। ये पॉइंट आपको समझ आ गए मुरक्कबे इजाफी में इसम इशारे का इस्तेमाल, कि अगर मुदौफ इलेह के लिए होगा तो इसम इशारा मुदौफ इलेह से पहले लिखा जाएगा, लेकिन अगर मुदौफ के लिए हम इसम इशारा मुदौफ के लिए इस्तेमाल करें तो वो कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल आखिर में लिखा जाएगा। और इसमें अदद को वो फॉलो करेगा इराबी हालत को, तो चूंकि वो मबनी है तो उसको तो वो एज सच हमें ज़ाहरी तौर पे नहीं पता चलेगा उस चीज़ का, लेकिन अदद को वो फॉलो करेगा, मुजफ्फर मोनस को जेंस को फॉलो करेगा, जो भी उसकी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन हमारी कुरान मजीद में सूरह कुरैश में आती है, आयत में आता है फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैती, तो यहाँ पर रब हादल बैत, यहाँ पर इसम इशारा इस्तेमाल हो रहा है मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन के साथ। रब्बुल बैत घर का रब, उस घर का रब, और रब्बुल बैत जो है वो घर का रब सिंपल, और उसमें फिर इशारा इस्तेमाल किया गया है घर के साथ, रब हादल बैती। जैसे हमने देखा कि मुदाफ इलेह की तरफ अगर इसम इशारा होगा तो हम उसमें मुदाफ इलेह से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हादल बैत ये मुरकबे इशारी की कंस्ट्रक्शन है, और रब हादल बैत ये मुदाफ इलेह के साथ में इसम इशारा का इस्तेमाल किया गया। ठीक, इसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन है जो हमारी सूरह यूसुफ में इस्तेमाल हुई है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भाइयों को उन्होंने एक विजिट के ऊपर अपनी कमीज़ दी थी, और उन्हें कहा था कि ये कमीज़ ले जाओ, और मेरे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दी थी कि उनके मुंह के ऊपर डालने के लिए। तो वहाँ पर क्या अल्फाज आते हैं, इज़हबू बिकमीसी हादा, बी कमीसी। यहाँ पर कमीसी जो है मुदाफ मुदाफ इलेह की कंस्ट्रक्शन आ रही है दमीर के साथ। फिर इसमें एक और चीज़ ये कि यहाँ पे जो कमीसी की कंस्ट्रक्शन है, कमीस इसमें मजरूर आ रहा है, मुदाफ इलेह तो हमेशा मजरूर ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुदाफ है वो भी मजरूर की कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। लेकिन कमीसी में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जो जब भी हमारे पास इसम के साथ याए मुतकल्लम आती है तो वो हमेशा इसम को मजरूर करती, मकसूर कर देती है, यानी उसकी इराबी हालत चाहे मरफू है, चाहे मकसूर है, और चाहे मकतू है, तीनों हालतों में वो हमेशा लिखी कमीसी ही जाएगी। इसलिए क्योंकि इसम जब याए मुतकल्लम के साथ मिल के आता है तो याए मुतकल्लम की डिमांड होती है कि इसम जेर के साथ आए, कसरा के साथ आए, और इसम उसकी ये डिमांड पूरी कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कमीसी को किसी और जगह, किसी और कंस्ट्रक्शन में, मरफू कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे तब भी ये लफ्ज़ पढ़ने में लिखने में कमीसी ही होगा। ठीक, तो बी कमीसी, अब यहाँ पर बी कमीसी हाजा, यहाँ पे क्योंकि इसम इशारा आखिर में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ये इसम इशारा मुदाफ की तरफ है, यानी कमीज की तरफ ये इसम इशारा जा रहा है कि मेरी ये कमीज ले जाओ, और इसको फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फेस के ऊपर रखने का उन्होंने कहा था। ठीक, अब यही कंस्ट्रक्शन हमारे पास इसम इशारा के साथ एक और जगह में आ रही है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में, कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया था, जो उनकी कौम के लोग थे उनके बुतों को तोड़ दिया था, तो उस वक़्त जब उनसे सवाल किया गया बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के कि क्या ये तुमने की तमाम काम को तोड़ने का, तो बल्कि ये इन बड़े ने किया है, तो वहां पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है रूहुम हाजा। कबीरुहुम ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलेह है, और ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास बन रही है दमीर के साथ, और हाजा चूंकि आखिर में आया है तो ये हाजा जो है ये कबीर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो कबीर है वो सिंगुलर है, और हाजा इसम इशारा भी सिंगुलर है, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सबसे बड़े बुत को कहा था कि बल्कि ये सारा काम जो किया हुआ है ये तुम लोगों के बुतों में जो सबसे बड़ा बुत है उसने किया है। हज़रत इब्राहिम का इशारा चूंकि एक बुत की तरफ था इसलिए यहाँ पर जो हादा है वो भी हमारे पास सिंगुलर आ रहा है, और कबीर भी सिंगुलर है। यहाँ तक हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन है मुरक्कबे इज़ाफ़ी की, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। इसमें अगर किसी का कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। اور اگر نہیں تو ہم پھر نیکسٹ جو ہماری مرکب ناقص کی آخری مرکب ہے وہ ہم انشاء اللہ آج شروع کریں گے. تو مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال اور مرکب اضافی میں صفت کا استعمال, یہ آپ لوگوں کو مثالیں بہت کثرت سے نہیں ملیں گی, ورنہ جو مرکب اضافی ہے وہ تو آپ لوگوں کو قرآن مجید میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے, چاہے وہ ضمیر کے ساتھ آئے, چاہے دو اسماء کے ہوں, اور چاہے وہ دو اسماء سے زیادہ اسماء جس میں استعمال ہو رہے ہوں مرکب اضافی میں, تو یہ کنسٹرکشنز آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں. صفہ کے ساتھ اور اسم اشارہ کے ساتھ جو ہیں مثالیں تھوڑی کم ہیں اس حساب سے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا جو ہمارا آخری مرکب ناقص ہے وہ ہم آج شروع کریں گے, اور وہ ہمارا مرکب ہے مرکب جاری. مرکب جاری میں ہمارے پاس دو اجزاء ہوتے ہیں, کہ ایک اس میں مرکب جاری میں ہمارے پاس اسم ہوتا ہے اور دوسرے ہمارے پاس حروف جارہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کی آج پہلی انٹروڈکشن ہوگا حروف کے حوالے سے بھی, کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ڈسکشنز کی ہیں وہ ساری اسماء سے ریلیٹڈ تھی, تو آج ہمارے پاس حروف کی بھی ابتدا ہو رہی ہے, کہ جب بھی کوئی اسم حرف کے ساتھ مل کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ کنسٹرکشن ہمارے پاس مرکب جاری کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, کہ اس میں حروف جارہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور اسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف جارہ کون سے حروف ہیں. تو اس میں اصل میں ہمارے پاس جو ٹوٹل حروف جارہ کی جو اسٹرینتھ ہے, جو تعداد ہے, وہ 17 ہے, 17. اور اس کو ایک شعر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے, وہ شعر ہے, باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا فی ان علا حتا الا. یہ پورا شعر ہے جس میں 17 حروف ہیں جن کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے حروف جارہ کو یاد کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ہم قرآن مجید کے ریلیٹڈ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ہمارے پاس جو حروف جارہ استعمال ہونے والے ہیں وہ 11 ہیں, تو ہم انہی 11 حروف کو ڈسکس کریں گے جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوں گے. ٹھیک, اب یہ ہو گیا ہمارے پاس حروف جارہ, ان کی ون بائی ون میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ حروف جارہ مرکب جاری میں سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی حرف ہوتا ہے, حروف جار میں سے کوئی بھی حرف ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے ہم نے مضاف الیہ کو پہلے دیکھا کہ وہ ہر حالت میں ہمارے پاس مجرور آ رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو مرکب جاری میں حرف جار کے بعد ہمارے پاس جو بھی اسم آتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. آپ کو دوسری ریزن پتہ چل رہی ہے, سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ جب بھی اس سے بفور میں آپ کو حرف جر مل جائے تو وہ جو اسم ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. یعنی حرف جر اور مجرور اسم کے ساتھ مل کے بنتا ہے ہمارے پاس مرکب جاری, جو کہ ایک ناقص کنسٹرکشن ہے, یعنی پورا جملہ واضح نہیں ہو جاتا ہے. تو اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس قرآن مجید میں حروف استعمال ہوئے ہیں, حروف جارہ جو استعمال ہوئے ہیں 11 حروف, ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے میننگز بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے بی, با کسرہ کے ساتھ بی. ہمارا پہلا حرف جر ہے, اس میں ہم اگر ہم اس لیٹر کو, اس حرف کو کسی بھی اسم کے ساتھ ملا کے کنسٹرکشن بنائیں تو اس میں ہمارے پاس مرکب جاری کی کنسٹرکشن بنتی ہے. جیسے اگر ہم القلم کو دیکھیں, القلم, اس کے سٹارٹ میں اگر ہم با فکس کر دیں, جو حرف جر بی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ویت کے میننگ میں آتا ہے, تو इसकी कंस्ट्रक्शन में फिर हमने जो इस्म है उसको हमने मजरूर कर देना है। वैसे तो नॉर्मली अल कलमू होता है, यानी मरफू होती है इसकी कंस्ट्रक्शन अकेले जब भी इस्म आएगा, लेकिन जब हम इसके शुरू में बा लगा देंगे तो हर्फ जर चूँकि अपने बाद वाले इस्म को मजरूर कर देता है, तो हमारे पास जो इसकी अराब बनेंगे वो बिल कलमी बनेंगे, अल कलम कसरा के साथ मजरूर। यानी इसका मतलब क्या होगा कि कलम के साथ। इसी तरह जो हमारी एक बिस्मिल्लाह में कंस्ट्रक्शन आती है हर्फ जर के साथ, अल्लाह का नाम इस्मुल्लाही, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है ये इस्मुल्लाही के क्या कौन सा मुरक्कब है इस्मुल्लाही? अगर हम बा शुरू में ना लगाएं तो इस्मुल्लाही, हाँ जी मुदौक मुदौकिले, अल्लाह का नाम, ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनती है मुरकबे इजाफी बनती है, तो इसके शुरू में जब हम बा को फिक्स करेंगे तो बा इस्म को मजरूर कर देगा। जैसे हम अगर इस कंस्ट्रक्शन को हम बगैर किसी भी हरफे जार के पढ़ें तो इस्मुल्लाही जो इस्म है वो मदमूम होगा, दम्मा के साथ आएगा। लेकिन अगर हम इसके स्टार्ट में बी लगा देते हैं हरफे जर वाला तो ये इस्म को मजरूर कर देगा। अल्लाह ही वैसे ही मजरूर है मुदाफिले की वजह से, और इस्म मजरूर हो जाएगा किस वजह से? अपने से पहले आने वाले हरफे जर की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनेगी वो बिस्मिल्लाह ही बनेगी। और इसमें जैसे अगर हम इस्मुल्लाही के जो शुरू वाला अलिफ है वो हम लिखते हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो हमसातुल वसल है, लेकिन बिस्मिल्लाही की कंस्ट्रक्शन में राइटिंग स्टाइल में आप देखते हैं कि अलिफ भी नॉर्मली नहीं मिलता, तो ये इसकी खास एक रस्म-ul-ख़त है इसका बिस्मिल्लाह का। अदरवाइज आपको जैसे जो रात को सोने की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तो उसमें जब आप लिखा हुआ देखते हैं बिस्मी का, उसमें भी जो हर्फ जर है वो इस्म के साथ आ रहा है, तो आपको वहां पर बुक्स में अलिफ इस्म के साथ हमजतुल वसल लिखा हुआ नजर आता है इस तरह। मुरकबे इजाफी में हमने ये चीज देखी थी कि जब एक इस्म को दूसरे की तरफ निस्बत दी जाती है तो वो जो है वो हमारे पास मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनती है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाही में ये जो इस्मुल्लाह है ये मुदौक मुदौक इले या मुरकबे इजाफी इस तरह से है कि इसमें नाम को अल्लाह की तरफ निस्बत दी जा रही है, इन दोनों का एक ताल्लुक बन रहा है इसमें। जैसे सिफा मौसूफ में हमारे पास होता है कि मौसूफ की सिफत आ रही होती है साथ में, या इस्म इशारा में हम किसी भी इस्म की तरफ इशारा कर रहे होते हैं अस्मा इशारा के साथ, तो इसी तरह जो हमारे पास मुरकबे इजाफी है उसमें हमारे पास दो अस्मा के बीच में ताल्लुक पाया जाता है। तो इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, यानी यहाँ पर जो नाम है उसको निस्बत की जा रही है, उसका एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है अल्लाह के साथ, तो इस वजह से ये मुरकबे इजाफी है। और फिर हम जब इसके स्टार्ट में बा पुट कर देंगे तो फिर बिस्मी जो है ये हमारे पास जार मजरूर की एक कंस्ट्रक्शन बन जाएगी मुरकबे जारी की, इसमें हरफे जार बा हो जाएगा और इस्म जो है वो मजरूर हो जाएगा। और इस तरीके से स्टार्ट में ये मुरकबे जारी है और इस्मुल्लाही मुरकबे इजाफी है। ये हमारे पास बा हो गया जिसका मतलब साथ में विद के मीनिंग में आता है, हमारा पहला मुरकबे जारी हो गया, सॉरी हर्फ जार हो गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ता, यानी बी बी जैसे बिल हकी बा जो है वो हमेशा नॉर्मली खसरा के साथ ही आती है, बिल हकी बिल कलमी बिस्मिल्लाही बिल्लाही अल्लाह के साथ, तो ये जो गा है वो हमेशा कसरा के साथ आएगा अपनी एराब पे। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हर्फ पे जार है वो है ता, और ये जो ता है ये हमेशा कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी कुरान मजीद में, सूरह यूसुफ में मिल जाएंगी, और तल्लाही इस कंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि चूंकि ये कसम का है और कसम भी अल्लाह ताला के साथ स्पेसिफिक, तो यानी कुरान मजीद में आपको ये मिलेगा नहीं किसी और की। जैसे कुरान मजीद में हमें और चीज़ों की भी कसमें मिलती हैं, वशमसी व दुहाहा व सीनी व जैतून, इसमें हमें बहुत सारे और अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जैसे सूरज की या तीन की, जैतून की, जमाने की, वल असर, इसमें जो ये तमाम कस्में हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो इन तमाम चीज़ों की कस्में अल्लाह ताला ने खाई हुई हैं। लेकिन जो ता स्पेसिफिकली अगर हम इस लेटर को देखें, ता को, इस हरफ जर को, तो ये हमेशा अल्लाह के साथ ही आया, तल्ला ही। तो ये आपको कुरान मजीद में ये वाला हर्फ कसम के तौर पर जब भी मिलेगा वो अल्लाह के साथ ही स्पेसिफिक मिलेगा, तल्ला ही। इसकी मिसालें आप लोगों को सूरह यूसुफ में मिल जाएंगी। फिर हमारे पास जो थर्ड वन लेटर है, हर्फ जर है, वो वाव है, और ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वाव खास तौर पर अल्लाह ताला की कसम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कुरान मजीद में इसकी एग्जांपल देखें, तो वशमसी व दुहाहा वल कमरी इजा तलाहा, और इसी तरह जो इसी सूरत की बाकी आगे आयात आ रही हैं उसमें हमें ये वाव कसम वाला मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह सूरत तीन, हाँ जी, जो ता है वो स्पेसिफिकली अल्लाह के साथ कसम खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो तल्ला ही मुरकबे जारी की जो ता की कसम है वो हमेशा अल्लाह के साथ स्पेसिफिक होके आती है, तल्ला ही, ठीक है। हाँ जी, पूरे कुरान में आपको तल्ला ही इसकी एक मिसाल मिलेगी, क्योंकि ता जो है वो खास तौर पर अल्लाह के साथ कसम खाने में उसको स्पेसिफिक किया गया। लेकिन जो वाव है, जो अभी हम तीसरा हर्फ जर देखते हैं, वो हमें बाकी चीज़ों की कस्मों में भी कुरान मजीद में मिलता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जो कसम खाने का जो एक तरीका है उसमें हम जो इंसान हैं, जो हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खा सकते हैं। यानी हम सूरज की कसम नहीं खा सकते, ये अल्लाह ताला की ज़ात से एक चीज़, एक स्पेसिफाइड है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी और चीज़ की कसम खा सकती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी हमें मिसालें इस चीज़ की मिलती हैं 30 पारे में, तो लेकिन हम इंसानों के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी भी और इंसान की या किसी भी और तख़लीक की, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ की कसम खा सकें। तो यहाँ पे जो भी हमें कस्में भी मिलती हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं, कि अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं सूरज की, चाँद की, तीन जैतून की, वल असर में, जमाने की। तो ये जो वाव है ये अल्लाह ताला के साथ भी आता है, वल्लाही अल्लाह ताला के साथ भी आता है, और बाकी जो तख्लीक है अल्लाह ताला की उसके साथ भी वाव जो कसम वाला है वो इस्तेमाल होता है। और इसमें फिर जैसे हमारे पास एक वाव होता है जो और के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, एंड के लिए। जैसे अगर हम सूरतुर रहमान देखें तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि अर रहमान अल्लम कुरआन, मुझे लगता है मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर मैं उसको पढ़ के आपको दिखाती हूँ। रोजी अर रहमान अल्लम कुरआन खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमर बिलहुसबान। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि चांद और सूरज इन सब का एक हिसाब किताब है, बिलहुसबान यानी वो अपने एक टाइमिंग्स के साथ आते जाते हैं, जो भी उनका एक तकदीर है वो है। यहाँ पर जो हमारे पास वाव इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास और के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और उसका हमें कैसे पता चला कि अशमसु बमा के साथ आ रहा है यानी मरफू है और वल कमरु कमर भी मरफू है। तो यहाँ पर जो वाव है वो और के मीनिंग में आ रहा है, लेकिन जब हमारे पास वाव कसम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसम होगा वो मजरूर होगा, जैसे वल्लास्री इनल इंसान अलफी खुसर। तो यहाँ पर हमारे पास जो असर है वो मकसूर आ रहा है क्योंकि वो मरकब जारी कंस्ट्रक्शन है और वाव वहाँ पर वाव कसमिया है। तो आम वाव में और वाव कसम वाले में हमें डिफरेंस इसी तरह पता चलता है कि जो आम वाव है वो अपने बाद आने वाले नेक्स्ट इसम को मजरूर नहीं करता, जबकि जो वाव कसम है वो अपने बाद में आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। हाँ जी, अगर वाव के बाद आपको इसम मजरूर मिलेगा तो फिर वो वाव कसमिया वाव होगा, वो हमारे पास हरफ जर वाला वाव होगा। इसमें फिर आपको आगे सूरत रहमान में मिसालें मिल रही हैं। वन नजमु, यहाँ पे नजम मरफू आ रहा है तो ये वाव और के लिए है। वन नजमु व शजर ये स्टूडान, यहाँ पर जो शजर है वो भी मरफू है तो ये वाव भी हमारे पास और के मीनिंग में आ रहा है। फिर वस्समा रफ़अहा व वज़अ अल-मीज़ान, तो यहाँ पर वस्समा में जो वाव है वो भी हमारे पास और के मीनिंग में आ रहा है क्योंकि उसके बाद हमारे पास इसम है वो मंसूब है। आज हम अपने जो हुरूफ़े जार हैं उनको हम तीन तक ही देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे। सबसे पहले हमने बा किया था जो कि साथ के मीनिंग में आता है, फिर उसके बाद हमने ता और वाव इन दोनों को डिस्कस किया है जो कि कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ता में जो कसम है वो खासतौर पर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होती है और जो वाव है वो आम है अल्लाह ताला के लिए भी और बाकी किसी के साथ भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो अब आपका जो होमवर्क है वो आप इसको भी बल्कि इसको मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में हम जब थोड़ी सी असमा को देखने के बाद हुरूफ़े जारा और थोड़ी सी हम तदबीर कुरान मजीद से करेंगे तो हम हरफ जार का कोई होमवर्क लेंगे। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो आपका एक पेज जो कि उसमें आया है व्हाट्सएप में वो और 5 एग्जांपल्स आपने मुदाफ मुदाफ पे ले की ढूंढनी है, लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मुरकब इजाफी है उसमें इस्तेमाल हमारे पास दमायक का होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल हो कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.